ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद् गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम्। धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण संपूर्ण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभाव पूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखते हैं, तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरार्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः तत्वदर्शिनः। गुरु और शिष्य का संबंध के बारे में बहुत प्रश्न हो सकते हैं, पूछना अच्छा है। नहीं पूछ के यदि गुरु के शरण में आते हैं वो शरण तो पूर्ण नहीं होगा। तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न है ना पूछना चाहिए गुरु के पास। वो किसी गुरु के पास जाने के पहले तो पहले निर्धारित होने चाहिए तो ये गुरु है कि नहीं, क्योंकि गुरु वो बहव संति शिष्य वित्तपहार का बहुत है। ऐसा कहते हुए गुरु जो निपुण है शिष्यों के वित्त धन लूटने में, दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संताप संताप दुर्लभ। ऐसे गुरु है जो निपुण है शिष्य का संताप मिटाना। तो पहले प्रश्न है क्यों गुरु के शरण में आना है, इसका जरूर क्या है। भगवान है वो हम स्वीकार करते हैं और हम सब भगवान का अंश है। ममाई वंशो जीवलोक है जीवभूत सनातन, हमारा सनातन संबंध है कृष्ण भगवान के साथ। तो गुरु का क्या जरूरत है, हम सीधे भगवान के पास जा सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर तत्व ज्ञान अर्जन करो। तो आपत्ति हो सकते कि अर्जुन तो सीधे कृष्ण से सब कुछ सीखे, वो सही है, परंतु अर्जुन तो भगवद गीता सुनने के लिए भगवान कृष्ण को भगवान जैसे ग्रहण नहीं किया, गुरु के रूप में ग्रहण किया। शिष्यस्थे हं शादी मांग त्वं प्रपन्नम। अर्जुन तो भगवद गीता श्रवण करने के पहले नहीं बताया कि ठीक है कृष्ण आप भगवान है मैं आपका सनातन दास हूँ, तो वैसे नहीं बोल। बहुत देर के बाद वो कथा आते हैं ममाई वंशो जीवलोक जीवभूत सनातन 15 नंबर अध्याय में। और अर्जुन कृष्ण को गुरु बनाया इसी कारण से क्योंकि अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ था। किम कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, तो यही विषय में अर्जुन विमोहित विमोहित। एक्चुअली अर्जुन तो पहले बहुत बल से बताए कृष्ण को कि कृष्ण ये लड़ाई करना ठीक नहीं है। तो पहले अर्जुन गुरु के कृष्ण के गुरु जैसे होने चाहता कि कृष्णा ये और सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित है सब लड़ाई के लिए आए हैं, किम समवेत युद्ध सब सब कुरुक्षेत्र गए हैं किसलिए है वो कुरुक्षेत्र पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, जिसमें यज्ञ करने हैं। तो पंच पांडव और दुर्योधन दो पक्ष जो थे, तो वहाँ गए वो पुण्य कर्म करने के लिए नहीं है, युद्ध करने के लिए। परंतु युद्ध के पहले अर्जुन का मन में बहुत अच्छी धारणा आई है कि वो सब लोग जो भगवान स्वयं उपस्थित है और भीष्म पितामह उपस्थित है, ये सब ज्ञानी जन उपस्थित है, लेकिन मेरे मत है कि ऐसे करना ठीक नहीं है। तो पहले अर्जुन तो जगत आचार्य निज को बना चाहता और कृष्ण को बताया न योत्स्य मैं लड़ाई नहीं करूँगा, न योत्स्य इति गोविंद, गोविंद नाम है, गोविंद गोविंद का मतलब जो इंद्रियों को आनंद देते हैं, तो मेरे इंद्रियों को आनंद दे दो, स्वीकार करो कि युद्ध करना ठीक नहीं है। जवाब में भगवान कृष्ण बताए कि अशोचानंद शोच प्रज्ञावाद जो कहते हो वो पंडित जैसे कहते हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते हो। और क्लाइब्यांग मास्मा का माफा था नहीं था उपपद्य थे शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो चेष्ट परंतप, क्या परंतप जो शत्रुओं की दमन करने वाले तुम क्लाइब्यांग क्लीब जैसे चाहे वो नैपुंसक जैसे हो। फिर अर्जुन बता हाँ ठीक है तुम बहुत कुछ जानते हो, ठीक है मैं शिष्य हूँ कहो। तो अर्जुन पहले तैयार नहीं था कृष्ण की बात ग्रहण करना और बहुत कुछ सुनने के बाद अर्जुन बताया सार्वमेतद्रितं मन्ये यन्मांग वदसि केशव, ठीक है जो आप कहते हैं वो पूरा सत्य है मैं ग्रहण करता हूँ। फिर उसके और 9 अध्याय के बाद अर्जुन बोले करिष्ये वचनं तव, अर्जुन को कन्विंस करना इतना सरल नहीं था। तो किसी गुरु के पास जानना है क्योंकि हम सब किम कर्तव्य विमूढ़, हम नहीं जानते हमारा जीवन का वास्तविक कल्याण कैसे हो सकता, हम नहीं जानते। ओ मानव जीवन में हम बुद्धि लगाकर हम सोच सकते कि सब कुछ जो मैं करता हूँ, केवल मैं नहीं, वो सब कुछ जो सब प्राणी करते हैं हर एक क्षण में किस लिए करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए। और जगत की परिस्थिति किस प्रकार है, दुखमय, सब कुछ जो हम करते हैं सुख के लिए करते हैं, और सुखी होते हुए भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना पड़े, वो तो भगवद गीता में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, वो ज्ञान का एक लक्षण है ये सब दुख होते हैं, ऐसे देखना वो ज्ञान का एक लक्षण है। परंतु भगवद गीता सुनना का जरूरत नहीं है वो ही बात समझने के लिए। और इसी विषय में श्रेष्ठ उदाहरण है बुद्ध देव। तो बुद्ध देव तो किसी शास्त्र का पाठ नहीं किया, किसी साधु से कुछ नहीं सुने, तो आपने से जगत की स्थिति देखने से सोचने से सिद्धांत निष्कर्ष किया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, और ये सब दुखों से बचना का उपाय प्राप्त करने के लिए बुद्ध देव अलग अलग प्रकार से तपस्या किया, पहले ध्यान किया और अंत में सिद्धांत निष्कर्ष किया कि वो जोर भगवत गीता में नहीं है, बुद्धदेव का सिद्धांत की अनात्मा। तो भगवत गीता में पहली शिक्षा है कि हम आत्मा है, सनातन आत्मा है, नहीं तो पहले आत्मा शब्द भगवान कृष्ण नहीं कहते है, पहले कहते देही, देहिनोस्मिन यथा देही, शरीरी वो शब्द कहते हैं, देही शरीरी इसका मतलब है आत्मा। और बुद्ध देव का सिद्धांत है कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि बुद्ध देव तो वेद के विरुद्ध है, निंद से यज्ञ विधेर आहा श्रुति जात। वो यज्ञ जिससे जिसमें बलिदान था, पशु हत्या था, पशु हत्या थी, वो सब बंद करने के लिए बुद्ध देव उनका प्रचार किया है। उनका उद्देश्य था सदया हृदय दर्शित पशु घातम, पशु हत्या यज्ञ का नाम है, वो सब बंद करना। लेकिन वो यज्ञ विधि श्रुति में है, वेद शास्त्र में है, तो वेद शास्त्र को तिरस्कार करके और उपेक्षा करके बुद्धदेव उनका मत प्रचार किया है। लेकिन वो उनका मत का आधार भगवद गीता का मत से अभिन्न है कि जगत दुखमय है और हम दुख मिलते केवल एक जीवन में नहीं, कि वो वैदिक संस्कृति में ही सब ग्रहण करते कि पुनर्जन्म होते हैं बारम्बार। शंकराचार्य का वचन है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। लेकिन ये वो शंकराचार्य वैसे बताया, लेकिन वो शंकराचार्य का कहने का समय वो तो कोई नया समाचार नहीं था, सब जानते थे। तो कि पुनर्जन्म होते है बुद्ध देव तो इस विषय में कोई संदेह नहीं किया। बुद्धदेव कहते कि दुख होते केवल एक जन्म में नहीं है, असंख्य जन्मों में, इसलिए जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना चाहिए। तो वो ही वो सब बच्चों तो नहीं बोलते, वो अलग अलग वचन बल दिया है, लेकिन सिद्धांत तो वो ही एक ही है कि जगत दुखमय है। तो जगत दुखमय है और कैसे हम दुख से बचेंगे, तो उपाय तो कोई भौतिक उपाय नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत की परिस्थिति दुखमय है। भौतिक जगत में दुख 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 और क्या है दुख, और सब उपाय जो है दुख से मुक्त होना वो सब उपायों से भी दुख होता। जैसे एक गरीब आदमी की धारणा हो सकता है कि यदि मैं बहुत पैसा मिल जाएगा तो फिर मैं सुखी होऊंगा, तो सुख मिलते और और रास्ते पर शरीर त्याग नहीं करते तो फाइव स्टार एयर कंडीशन हॉस्पिटल में शरीर त्याग करते, लेकिन शरीर छोड़ना पड़ेगा दुख से। वो मृत्यु का दुख से किसी भौतिक उपाय, मृत्यु का दुख से बचाना कोई भौतिक उपाय नहीं है, क्योंकि वो भौतिक संसार का एक मूल लक्षण है। तो इसलिए आध्यात्मिक उपाय होना चाहिए। तो आध्यात्मिक उपाय क्या है, क्या हम आध्यात्मिक उपाय के बारे में हम पता नहीं मिलते। सब बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में ऐसे शिक्षण नहीं होते, शंदा मार्का के गुरुकुल में ऐसे शिक्षण नहीं होते। तो शिक्षण है क्या है, पैसा कमाओ, गुलाम जाओ, ऐसे नहीं कहते। बी अ सक्सेस, बी अ सक्सेस का मतलब बड़ा गुलाम बन जाओ, उसका मतलब बी अ सक्सेस का मतलब Mrityu prapti ke pahele kulko barabana. Jab bimar ho to 5-star hospital jao. We will success. Wo hi success se. Jab heart attack ho to America jao operation ke liye. Wo hi success. Wo success. Mujhe heart attack hua do bar aur America gaya surgery ke liye. Oh, successful. Bahut successful aadmi hai. Paisa wala aadmi hai. To adhyatmik path hum kaise milenge? Srila Prabhupada yaha likhte hain, nisandeha atma sakshatkar ka marg kathin hai. Marg pahle samajne, nirdharan karna adhyatmik path kya hai, wo kathin hai. Aur nirdharan karne ke paschat, janne ke paschat, us path par chalna wo bhi kathin hai. Sambandha gyan hai, abhideya hai, prayojan hai. So sambandh kya hai? Param satya ke sat, hamara wo sambandh kya hai? So adhikansh kehte hue guru kehte hai ki tum bhi bhagwan ho. Aise kehte hai na? Wo kasmei bhagwan ho. Aise kehte hai na? Ha? Koi bhagwan ke liye khojna ka jarurat nahi hai, to har ek garib aadmi bhagwan hai. Daridra narayan seva karo. Aise alag alag dhang se alag alag bakwas kehte hain. Aur yadi ek vyakti torasa buddhiman hote samajh sakte hai ki garib log jo raste mein hai to bhagwan nahi hai, kyunki ve bhi bhagwan ki prakriti ke teen gunon se prabhavit hai. Or maybe janma mrityu jara vyadhi or garibi kaduk ke beech mein hai. Isliye Srila Prabhupada ki granton ka vitaran karna chahiye, jisse log jo hamesha bakwas sunte to ek disha se ye sab bhautik tavadiyon ka bakwas sunte to paisa kamo acha kariya hona chahiye, or I say successful ban jao. Or dusri disha se yadi adhyatmik marg prajana chahte to dusre prakar ka bakwas sunte to sab bhagwan ho jato mat tato pat jo bhi karte ho aur kuch nahi karke bhi to sab pat ek hi hai. To isliye just say janta ke beech mein adhyatmik gyan ka beej bapan hoga, kam se kam beej bapan hoga. Srila Prabhupada ki divya granton ka vitaran karna chahiye. To adhyatmik marg kya hai, isko samajhna kathin hai. Aur us pat prapt karke bhi उस पथ पर जाना वो भी कठिन है. इसलिए अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए. तो गुरु कौन है? गुरु कौन? गुरु कौन? एक पुस्तक है, गुरु कौन पुस्तिका है. और सब जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, सब जो शास्त्र में है, उसमें छोटी पुस्तिका में सब संकलित है. यहाँ पर है वो पुस्तक, वो सब हमारे सब शिविर में रखना चाहिए. सबका पाठ्य है वही पुस्तक, कृष्णनाम प्रभु की पुस्तिका. और श्रील प्रभुपाद की सभी ग्रंथों में और उनके सब वचन कथा में गुरु और शिष्य संबंध के बारे में बहुत बहुत तथ्य है. और एक सामान्य विद्वान पाश्चात्य देश का श्रील प्रभुपाद के सब पुस्तक पढ़ के यही मंतव्य किया है कि Prabhupada Purva Charyong Se Bahut Bahut Upadesh Dete Guru Ke Bare Mein. Or Aisa or Ki Guru Ke Charan Mein Sharan Lene Hai. To Wo Adhyapak Vidwan Jo Hai. Aisa Spash Nahi Bataya Lekin Aisi Dharna Hai. Ki Prabhupada इनके शिष्यों की पूजा लेने चाहते इसलिए बहुत जोर देते हैं कि गुरु के चरण में आत्मसमर्पण करने चाहिए लेकिन वैसे तो नहीं है श्रील प्रभुपाद तो निर्मल परमहंस शुद्ध वैष्णव है और इनके हृदय में कुछ भी इच्छा नहीं है किसी भौतिक इच्छा कुछ भी नहीं है अमानिना मान देना Chaitanya Mahaprabhu ka Trinadapi shloke pratik hai Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ekba bole ki Garga Muni ko bataya ki Aborigine shabd hai na. Aborigine Hindi mein kya bolte hai? Adivasi. Tribal, I say. To Prabhupada Garga Muni ko bataya ki मेरे ख्याल में तुम सब सफेद आदिवासी हैं जंगली लोग ऐसे हैं तो प्रभुपाद नहीं चाहते थे किसी से पूजा ग्रहण करना परंतु हमारे हित के लिए बार बार हमको उपदेश दिया कि गुरु के चरण में शरण नहीं लेने से कुछ भी आध्यात्मिक उपकार नहीं हो सकते इसलिए प्रभुपाद बाबा ऐसे बोलते तो वो सब उपदेश जो है श्रील प्रभुपाद के पुस्तक में गुरु और शिष्य के बारे में उसका सार अंश है यही तात्पर्य में इसको बार बार पढ़ना चाहिए और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वतः सिद्ध गुरु की संतुष्टि करना आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने का रहस्य ही है ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर ठाकुर की सारार्थ दार्शनी गीता के ऊपर टीका से उद्धृत है और श्रील प्रभुपाद इनके गृहस्थ जीवन में जब ये तात्पर्य संस्कृत में पढ़ते हैं तो उससे श्रील प्रभुपाद बहुत प्रभावित है और श्रील प्रभुपाद बार बार बताए कि सब कुछ जो मैं करता हूँ वो केवल मेरे गुरु का आदेश के अनुसार है और गुरु की प्रसन्नता के लिए है और सब कुछ जो हुआ कि पूरी पृथ्वी में बहुत असभ्य लोग जो थे अभी शुद्ध वैष्णव बन गए हैं तो ये सब गुरु की कृपा ही है तो किस प्रकार व्यक्ति योग्य है गुरु होना बहुत बड़ा पद है नहीं दूसरे की पूजा ग्रहण करेंगे और पैसा ग्रहण करते हैं तो अच्छा हो सक्सेसफुल होने चाहते हो तो इतना मेहनत करना ऑफिस में उसको जरूर क्या है तो साधु बन जाओ और लोग तो पैसा देते हैं नहीं सामान्यतः ऐसे शिविर के बाद तो मेरे पास कम से कितना आता है आपको मालूम है क्योंकि आपको सब देता हूँ 3-4 lakh कितना सा बढ़ गया सब राधेश प्रभु को देता हूँ जो जो भी मिलता हूँ ये अपना जेब में रख जेब तो नहीं है लेकिन ऐसे ये यही जेब यह इसका जेब में रख सकता लेकिन ऐसा अगर किया था तो आप मुझे नहीं दे क्यों मुझे देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि राधेश प्रभु को देता हूँ और आदेश प्रभु ये सब खर्चा के लिए वो सब और बाकी जो है तो Och bad mig att få trust mig dalte, jamma krate. Och vad sa priset och pustak, mudret kanna kelie och fam. Shila Prabhupada ka upadesh. Bahut upadesh hai Shila Prabhupada ke, AK, fam. Chabra Prabhupada hai. To kon yoga hai? Guru hona. To sab Vaishnav guru hi hai. Guru kon hai? Vayu Puran mein ye guru shabd ki paribhasha milti hai. Achinoti yashastrani achare sthapyati api swayam acharate yasmad acharyaste na kirtitaha. Acharya kon hai jo upadesh dete shastra ke anusa aur swayam jante hai ki shastra mein kya hai, kya siddhant hai aur swayam acharan se bhi sikhate keval maukik upadesh nahi dete to unka charitra se bhi vyavahar se sab kuch jo karte shiksha pradan karte to isi prakar sab vaishnav to guru hai visheshkar jo madhyam adhikari hai kanishtha adhikari to bhakti mein pura sthit nahi hai jaha komal shraddha shei kanishtha jan jinki hriday mein wo shraddha to majboot nahi hai kanishtha vaishnav bolte aur madhyam adhikari to shastra to puritara nahi jante shastra yukti anipun parantu dridha shraddha ja madhyam adhikari kon hai jo dridha shraddha se krishna bhakti karte parantu shastra yukti mein nipun nahi hai shastra yukti is prasang mein yukti shabd ke do mukhya arth hai jaise samvad vivad mein agar koi aate aur shastra se praman dete ki vastav mein param satya niraka hai तो जो शास्त्र युक्ति में निपुण है तो शास्त्र से सत्य सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते कि परम सत्य निराकार है और उनका आकार भी है और परम सत्य कृष्ण स्थु भगवान स्वयं ही है अचिंत्य भेद भेद तत्व darshan pradarshan kar sakte aur shastra yukti shabd ka ek aur arth hai ki kabhi kabhi shastra mein ek vachan mein shastra ka dusra vachan ke virodhi jaise dikhte jaise kal parson us shlok ke upar paath kiya tha sudur darsham idam rupam ki ye rup mera rup krishna kehte ki uska darshan karna bahut durlabh hai parantu krishna bhagavan karo sainik ke beech mein yahi vachan bata hai कैसे समझ जाते तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य से हम समझ सकते और कैसे हम समझ सकते हम अभी नहीं बताऊंगा तो दो दिन के पहले बताया था हार्मोनाइजेशन समाधान करना शास्त्रों के सब वचनों का समाधान करना उत्तम अधिकारी करते हैं, कर सकते हैं। तो सब वैष्णव तो गुरु है, क्योंकि जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और योग्य है दूसरों को देना। परंतु सब तो औपचारिक रूप से दीक्षा प्रदान नहीं करते। दीक्षा प्रदान करते हैं कौन, कश्चो उनके गुरु से आदेश प्राप्त किया है दूसरों को दीक्षा देना। वास्तव में दीक्षा देना वो तो सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ा अनुष्ठान नहीं है। तो शिक्षा आदान प्रदान में गुरु शिष्य संबंध स्थापित होते। तो जैसे रबर स्टाम्प मारने से गुरु शिष्य संबंध स्थापित नहीं होते। संबंध स्थापित कैसे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेन चिथे ज्ञानम ज्ञानेन सत्वदर्शिनः। प्रणिपात अर्थात विनीत भाव से सेवा करना, और परिप्रश्न परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना। तो विशेषकर ये दो उपाय से गुरु शिष्य संबंध स्थापित होते हैं। तो कौन योग्य है वो आचार्य पद से सेवा करना, क्योंकि गुरु कौन है, वैष्णव है, और वैष्णव सेवक है। और जो आचार्य है तो क्या कहते हैं, आचार्य होने से तो खुद को राजा बनाने के लिए, और वैसे नहीं है तो इनके गुरु की सेवा करते हैं दूसरों को उपदेश देने से। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हमार आज्ञा गुरु होया थारो ई देश। तो इसी भाव से एक वैष्णव, जो वैष्णव दास अनुदास 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 गुरु होते, तो कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं कि एक व्यक्ति गुरु है, कौन कौन योग्य है, किसके ऊपर मैं निर्भर कर सकता हूँ कि इनसे मैं यथार्थ उपदेश प्राप्त करूँगा, जिससे मैं जो बद्ध जीव हूँ तो माया से मुक्त हो सकूं और कृष्ण के पास जा सकता हूँ। तो यही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम शास्त्र में कुछ मार्गदर्शन मिलते हैं। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जीवा वेगं उदर भस्तु वेगं एतान वेगं यो विषहेत धीर सर्वमपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। गुरु तो छह वेग को दमन करते, वाचो वेग तो मौनी तो नहीं है, कल उसके बारे में बताया ना, मौन व्रत मौनी नहीं, इस प्रकार मौनी है कि खाली कृष्ण और कृष्ण संबंधित कथा कहते हैं, उपदेश नहीं देते कि ठीक है आज हरे कृष्ण कहो कल शिरडी जाओ साईं बाबा का दर्शन करें, ऐसे नहीं कहते। और ऐसे नहीं कहते कि जो भी तुम करने चाहते हो तो करो, अगर ऐसे कहते हैं तो कैसे गुरु है, जो भी करने चाहते तो ऑलरेडी मैं जो भी करने चाहता हूँ तो करता हूँ जिससे परम हित हमारा परम हित होगा, उसी प्रकार गुरु वचन, गुरु उनका वचन ऐसे ही कहते। वाचो वेगम क्रोध वेगम, इसका अर्थ नहीं है कि एक बहुत प्रचलित भूल धारणा है कि साधु लोग तो कभी भी क्रोध प्रकाश नहीं कहते। तो इस विषय के बारे में श्रील प्रभुपाद बताए कि इतिहास में भगवान कृष्ण के दो सबसे बड़े प्रसिद्ध भक्त है रामलीला में कौन? हनुमान, और कृष्ण लीला में अर्जुन। और प्रसिद्ध है तो कैसी प्रसिद्धि मिली दोनों लड़ाई करने से? और लड़ाई में गुस्सा नहीं होना कैसे संभव है? हाँ, तो वो व्यक्ति का मारो गुस्सा नहीं होने से वो भी संभव है। कुछ लोग वैसे तो है जो हंस के और पीठ में और क्या बोलते हैं चाकू डालते हैं ऐसे, लेकिन हनुमान और अर्जुन धार्मिक योद्धा है। तो अगर गुस्सा हो तो सत सिद्धांत स्थापने में गुस्सा होने चाहिए। जैसे यहाँ द्वारका के शंकराचार्य पूरा भारत में प्रचार करते हैं साई बाबा की पूजा बंद करो, अच्छा है ऐसे है, ऐसे कहते हैं अच्छा है। क्रोध बेगम जीवा बेगम द्वारकाधीश बहुत कुछ कहते हैं। हम परसों तीन कब गुरुवार को नहीं गुरुवार शुक्रवार गया था और दिन का समय द्वारकाधीश के सामने कितना आम बहुत और द्वारकाधीश सब खाते हैं। तो द्वारकाधीश भगवान है और भगवान के प्रतिनिधि, तो इनका एक गुण है शास्त्र में वैष्णवों के गुण की तालिका में एक है मिथभुक, अर्थात अत्यधिक आहार नहीं लेते। जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम वो सब नियंत्रण करते हैं साधु। एक और है मन, तो हम देख सकते कि और सुन सकते तो वो साधु क्या बोलते और कैसे खाते हैं, उनका आचरण व्यवहार सब कुछ देख सकते, लेकिन मन में क्या है वो हम नहीं देख सकते। इसलिए शास्त्र विधि है कि तुरंत किसी को गुरु बनना नहीं है, उनका चरित्र देखना चाहिए, क्योंकि मन में जो है तो वो धीरे धीरे प्रकट होते हैं। ऐसा है कि कुछ लोग वैसे है नहीं जो बहुत मीठी बात बोलते हैं, लेकिन मन में अलग उद्देश्य है, तो वो धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा। लेकिन यदि बहुत साल के बाद तो साधु तो वैसे साधु है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि साधु ही है। जैसे श्रील प्रभुपाद उनकी गीता कथा जो है 1966 न्यूयॉर्क में और 1977 वृंदावन में, तो शुरुआत से श्रील प्रभुपाद तो केवल गीता और भागवत वाणी यथारूप बोलते थे और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं था कि श्रील प्रभुपाद शुरुआत में कृष्ण 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 और बाद में कुछ अलग बताए, नहीं। और उनका उद्देश्य शुरुआत से वो स्पष्ट है, उनका उद्देश्य था पाश्चात्य देश धारण, और पाश्चात्य देश में प्रचार करके भारत ने भी प्रयास किया है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, सुप्रयास किया है। जैसे हनुमान का उद्देश्य था, सीता कहा है पाता प्राप्त करना, तो उसके अतिरिक्त लंका दहन किया है। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद इनके गुरु से आदेश प्राप्त किया पाश्चात्य देश में प्रचार करना। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि वो मेरा गुरु का आदेश है, तो वो तो कुछ किया था, अभी मेरी स्वयं की इच्छा है भारत में प्रचार करना। तो मन में जो है अगर अलग है तो जो सबके सामने जो बोलते हैं और प्राइवेट लाइफ में जो करते हैं, अगर वो अलग है तो संदेह हो सकते, संदेह होने चाहिए। सो श्रील प्रभुपाद बोले कि साधु हैज नो प्राइवेट लाइफ। साधु तो सबके सामने है सदैव, कभी कभी तो जप करने के लिए और विश्राम करने के लिए थोड़ा अलग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे वो क्रिश्चियन प्रीस्ट उनके वो साल में दो हफ्ता की छुट्टी होते और उसी समय तो सब जो करते तो सब भूल के जो भी करना चाहते कर सकते और सैलरी भी मिलते। तो साधु तो वैसे ही है और छुट्टी तो नहीं होती है। जैसे वो हम बार बार कहते हैं कि वो सब ऑफिस में दुकान में गुलामी करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होते हैं ना। तो साधु लोग का कोई छुट्टी नहीं होता, सततम कीर्तयन्तो मां, और छुट्टी भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि बहुत साल तो भक्ति के, अभी मुझे क्या कुछ कंप्यूटर गेम्स खेलना है मुझे, ऐसा नहीं है। तो चरित्र देखना चाहिए और इस तात्पर्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है कि गुरु तो परंपरा प्राप्त सिद्धांत कहते हैं। अपना मन में कुछ कल्पना जो आते है ऐसे तो नहीं कहते, और जो कहते हैं परंपरा प्राप्त सिद्धांत कि वो परंपरा प्राप्त सिद्धांत है जो वो साधु कहते हैं कि वो प्रमाणिक है, तो इसलिए प्रमाण देते हैं शास्त्र से। तो हम कहते हैं कि कृष्ण भगवान ही है, तो प्रमाण क्या है? बहुत बहुत प्रमाण है। कृष्णस तु भगवान स्वयं नतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं भवतम सूत्रे मणिगणा इव। कि साधु जन तो उपदेश देते शास्त्र की वाणी पालन करना, तो शास्त्र में क्या प्रमाण है? यह शास्त्र विधिमुत्सृज वर्तते काम कारतः न सस्यम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र विधि पालन करने से जीवन व्यतीत करने चाहिए, नहीं तो सुख शांति और परम गति प्राप्त करना संभव नहीं है। तो संक्षेप में थोड़ा सा बताया था गुरु और शिष्य संबंध के बारे में, तो विषय विशाल है, इसलिए अभी ये छोटी कथा समाप्त करता हूँ। पंचाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी योग्य समय है, सब उपस्थित भक्तों को धन्यवाद कहना यहाँ आने के लिए, और सब आयोजक को राधेश प्रभु और टीम, सब उपस्थित भक्तों और अनुपस्थित भक्तों को भी जो किचन में है, हम नहीं देखते हरी सॉरी प्रभु और कौन कौन है किचन में, बहुत सारे भक्त है, हम नहीं देखते उनको क्योंकि किचन में है, बहुत मेहनत करते हैं जिससे आप सब तीन बार प्रसाद सेवा कर सकते हैं। तो सभी भक्तों के श्री चरण पर मैं दंडवत करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।